नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। जीत के बाद श्री राधाकृष्णन ने मीडिया को बताया कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है।
Every post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. It is the other side camp said it is a ideological fight, but from the voting pattern we understand the nationalistic ideology has overwhelmingly victorious.
सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने INDI गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने ये जानकारी दी।
I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि श्री राधाकृष्णन का दशकों का सार्वजनिक जीवन में समृद्ध अनुभव देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कल हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री मोदी ने आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। श्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। ये राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 14वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 21 विभागों और मंत्रालयों से संबंधित पारिवारिक पेंशन मामलों से संबंधित कुल 894 शिकायतों का निवारण इस पेंशन अदालत में प्रस्तावित है। मंत्रालय ने कहा है कि वे शिकायतों के ज्यादा तेजी से समाधान और पारिवारिक पेंशन भोगियों की गरिमा तथा उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पोडैल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की जानहानि पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसराइल की सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले की पुष्टि की है। इसराइली रक्षा बल और इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कतर की धरती पर इसराइल की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। इस बीच भारत ने दोहा में इसराइली हमलों के बाद चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया है। अबुधाबी में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।